नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद के विस्तारित बजट सत्र का 3 दिन का विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधनों पर होगा विचार विमर्श। प्रदेश में कल से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। नागरिक घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे विवरण। राज्य के सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित। और तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से राज्य में गर्मी का असर बढ़ा। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री के पार। अब समाचार विस्तार से। संसद के विस्तारित बजट सत्र का 3 दिन का विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 18 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में खास तौर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधनों पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 2023 में पारित इस अधिनियम पर अमल के लिए सरकार 3 संशोधन विधेयक पेश करेगी। एक रिपोर्ट।
यह विशेष बैठक संविधान में संशोधन करने के लिए बुलाई गई है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू किया जा सके। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर सभी पार्टियों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया था। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि यह बेहद जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराए जाएं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी यह आश्वासन दिया कि महिला आरक्षण विधेयक संतुलित है और यह हर राज्य, समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को ध्यान रखता है।
ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। सब मिलकर के एक आवाज और एक मत से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करेंगे।
भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी आर और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने दोनों सदनों के अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने और अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिहार में कल से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। इस चरण के तहत नागरिक वेब पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर स्वयं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह चरण 1 मई तक चलेगा। इस प्रक्रिया में परिवार के मुखिया का नाम और किसी भी एक सदस्य के मोबाइल नंबर से पंजीकरण किया जा सकता है। स्वगणना के बाद संबंधित व्यक्ति को एक आईडी प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक के घर आने पर उन्हें उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद 2 मई से मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू होगी, जो 31 मई तक चलेगी। राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना के स्वगणना और मकान सूचीकरण में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सही और स्पष्ट उत्तर दें, साथ ही जनगणना कार्य में लगाए गए कर्मियों का सहयोग करें। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। नगर विकास और आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। चुनाव की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य के सभी नगर निकायों में 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराया जाना था। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय आम और उपचुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है। मतदाता 28 अप्रैल तक मतदाता सूची को लेकर दावा आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। वहीं 17 अप्रैल से 4 मई तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। 13 मई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इधर संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में बूथ गठन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने देश भर में घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।
ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप किए जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। कल लगभग 2100 रेड और सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 58 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है।
इधर प्रदेश में LPG की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। जिला प्रशासन की ओर से नियमित रूप से LPG वितरण की समीक्षा की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी फास्टैग जारीकर्ता बैंकों को फास्टैग से जुड़े वाहन पंजीकरण नंबरों का तत्काल सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिनमें फास्टैग रीडर द्वारा दर्ज किया गया विवरण वाहन की नंबर प्लेट पर प्रदर्शित वास्तविक पंजीकरण नंबर से मेल नहीं खाता है। नेपाल सरकार ने भारत से 100 रूपये से अधिक की खरीदारी पर भंसार यानी कस्टम शुल्क देना अनिवार्य कर दिया है। नया नियम मंगलवार से प्रभावी हो गया है। इसका उल्लंघन करने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नियम के उल्लंघन के आरोप में 15 लाख रूपये से अधिक के सामान जब्त किए गए। अररिया जिले से गुजरने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी विनोद तोहन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा निर्धारण और अन्य पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण गर्मी का असर पड़ने लगा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। इस दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का टेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कैमूर के भभुआ का अधिकतम तापमान 41.7, शेखपुरा, बक्सर और औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, गया जी का 40.7 और पटना का 38.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से उत्तर पूर्वी जिलों अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में कुछ स्थानों पर कल से बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में चल रहे श्रमिकों के प्रदर्शन के बीच राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव के खिलाफ स्थानीय साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि दोनों ने एक पुराने वीडियो को नोएडा का बताकर साझा किया जिससे भ्रम और तनाव का माहौल बना। पुलिस ने इसे अफवाह फैलाने की साजिश बताया है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा के दौरान मुंगेर पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक इमरान मसूद ने बताया कि फर्जीवाड़ा गिरोह के सरगना समेत 3 लाइनर और 18 आवेदकों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर 15 से 20 लाख रूपये वसूलता था। अररिया की एक अदालत ने 28 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन सभी पर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वाले सभी दोषियों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है। इस मामले में 6 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं मधुबनी की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी ताराकांत चौधरी और इंद्रनंद चौधरी को आजीवन कारावास और 25,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूर्वी चंपारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने चार अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 पासबुक, 10 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल और लैपटॉप समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। भागलपुर जिले के नौगछिया के बाबा विश्व राउत पुल पर एक तेज रफ्तार हाईवा और पिकअप की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में 2 महिलाएं हैं। और अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल रात बेंगलुरु में लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 146 रन पर सिमट गई। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से मुंबई में होगा। नालंदा जिले के राजगीर खेल परिसर में आज से सीनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। प्रतियोगिता में महिला वर्ग में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें हिस्सा लेंगी, वहीं पुरुष वर्ग में 26 टीमें भाग लेंगी। महिला वर्ग के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं, जबकि पुरुष वर्ग के मैच 20 अप्रैल से खेले जाएंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कल से शुरू हुए मेंस टी20 ट्रॉफी में दरभंगा, शिवहर, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज की टीमों ने जीत दर्ज की। वहीं श्यामल सिंह अंडर 16 ट्रॉफी में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, गया, भोजपुर, जमुई और पूर्वी चंपारण की टीमों ने जीत हासिल की। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, पहली बार जदयू से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 20 साल के नीतीश युग का पटाक्षेप, सत्ता अब भाजपा के हाथ, सम्राट बने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री। दैनिक जागरण ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, परिसीमन से बदल जाएगा लोकसभा सीटों का भूगोल और गणित। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीबीएसई 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, 93.7% छात्र हुए उत्तीर्ण, पटना जोन में 89.33% रिजल्ट। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, संसद का विशेष सत्र आज से, पास होंगे महिला आरक्षण समेत 3 अहम बिल। आज अखबार लिखता है, पंचायत स्तर पर भूगर्भ जल संरक्षण के लिए चल रहा बड़ा अभियान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के विस्तारित बजट सत्र का 3 दिन का विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधनों पर होगा विचार विमर्श। प्रदेश में कल से जनगणना का पहला चरण होगा शुरू, नागरिक घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे विवरण। राज्य के सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित। और तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से राज्य में गर्मी का असर बढ़ा, कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।